नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि हमारी रिफाइनरियां 100% क्षमता से काम कर रही हैं।
हमारी रिफाइनरीज 100% या उससे भी ज्यादा कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी हैज इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 40%। एलपीजी वी हैव अ ह्यूज इंपोर्ट डिपेंडेंसी और इसका 90% जो आ रहा था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहा था, इसलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा।
प्रेस वार्ता में सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में तनाव के बीच भारतीय जहाजों की सुरक्षा, नागरिकों की निकासी और ऊर्जा सुरक्षा पर बल दिया। सरकार ने घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रूपये प्रति लीटर की कटौती की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये निर्णय पश्चिम एशिया संकट के बीच लिया गया है। उन्होंने कहा कि डीजल के निर्यात पर 21.50 रूपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर 29.50 रूपये प्रति लीटर शुल्क लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी न हो। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि वैश्विक स्थिति के कारण पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की कीमतों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी संकट के बीच दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय खुद उसका असर झेलने का विकल्प चुना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि सरकार ने अपने कर राजस्व में भारी कटौती की है, जिससे तेल कंपनियों को पेट्रोल पर लगभग 24 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 30 रूपये प्रति लीटर पर होने वाले भारी नुकसान को कम किया जा सके। सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन को बढ़ाकर 70% करने का निर्णय लिया है। इसमें से 20% आवंटन इस्पात, ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य श्रम प्रधान उद्योगों को दिया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इसका उद्देश्य वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति को सुगम बनाना है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। ये विधेयक कुछ अधिनियमों में संशोधन करके अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने और उन्हें तर्कसंगत बनाने का प्रयास करता है। इसे जीवन और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विश्वास आधारित शासन को और मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम पश्चिम एशिया संघर्ष पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और राज्यों की तैयारियों तथा योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सरकार ने कहा है कि लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों, अनुसंधान और विकास पहलों के कारण शुष्क भूमि और वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन में 82% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। आज राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में कृषि भूमि का 48% हिस्सा शुष्क भूमि है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने की समय सीमा 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर फिलहाल बमबारी नहीं करेंगे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के संसदीय दल के नेता बालेन शाह ने आज नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 35 वर्षीय बालेन्द्र शाह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन स्थित अपने कार्यालय से टेलीविजन पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की पूजा अर्चना की और सूर्य तिलक के दर्शन किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।